इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और क्लीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।
खुदावंद आसमानी बाप, एक बार फिर से तेरा कादर और जोरावर हाथ हम सब की जिंदगियों पे ठहरे और आज हम सब का तेरे हुजूर में जमा होना प्रॉफिटेबल हो, ईमान की तरक्की हो, रूह में मजबूती हो और हम मसीह की पहचान में और क्रिश्चियन करेक्टर में एक दर्जा और आगे बढ़ जाएं। और ए खुदा, तेरा बड़ा जलाल और तेरी बड़ी कुदरत हमारे दरमियान हो। और हम इस वक्त उन लोगों को भी याद करते हैं जो जापान के सारे डिजास्टर में इस अर्थक्वेक और इस सुनामी का शिकार हैं। और ए खुदावंद, उन खानदानों के लिए तेरे पीस और तेरे कंफर्ट को मांग लेते हैं। वहाँ के चर्चेस के लिए, ईमानदारों के लिए एक बार फिर से तेरी फरहमी को मांग लेते हैं। खुदावंद अपने बड़े फजल और रहम को ढेल दे और जानों को बरकत दे। और आज एक बार फिर से अपने कलाम के वसीला से हम सब से हम कलाम हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो कुछ देर के लिए जो हम स्टडी करेंगे आज, हाउ टू ओवरकम आवर जजमेंटल स्पिरिट। हमारे क्रिश्चियन करेक्टर में जो एक मेन फ्लॉ आ जाता है, ये होता है, उसमें तीन चीजें हमें अक्सर हम देखते हैं या हमें देखनी पड़ती है। नंबर वन, वी जंप टू कंक्लूजन्स। हम एकदम से अपनी राय या फैसला कायम कर लेते हैं किसी शख्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, हालात के बारे में, किसी हुकूमत के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। हम जल्दी से क्या करते हैं, अपना कंक्लूजन जो है वो दे देते हैं। सेकेंडली, फ्लॉ जो हमारी जिंदगियों में है वो ये है कि हम वी आर वेरी क्विक फॉर पर्सनल जजमेंट्स। फौरन किसी के ताल्लुक से, किसी की पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से फौरन हम अपनी जजमेंट जो है वो दे देते हैं। नंबर थ्री, वी आर फास्ट इन क्रिटिसिज्म। दुनिया में भी ये प्रॉब्लम है, चर्च में भी ये प्रॉब्लम है। वी आर फास्ट इन क्रिटिसिज्म। बहुत जल्द, बड़ी तेजी के साथ हम हर एक चीज के ताल्लुक से या पर्सन के ताल्लुक से अपनी क्रिटिसिज्म जो है वो शो करते हैं। सो इन दो चैप्टर्स में, रोमियो 14 बाब में और रोमियो 15 बाब में, पौलुस रसूल एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर चर्च की पेश करते हैं कि चर्च को कैसा होना चाहिए और चर्च का जो टॉलरेंस लेवल है वो क्या होना चाहिए, चर्च का एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और इस मैसेज को हम दो संडे में देखेंगे। पार्ट वन हम आज कवर करेंगे, खुदा की मर्जी हुई तो पार्ट टू जो है हम नेक्स्ट संडे देखेंगे। अक्सर ईमानदारों में ये देखा जाता है कि इफ दे आर 20 पॉइंट्स किसी चीज के ताल्लुक से, अगर हम 19 पे एग्री करते हैं और 1 पे भी हम डिसएग्री करते हैं तो हम उस डिसएग्रीमेंट पे ज्यादा जोर देते हैं और अपनी सारी एनर्जीज उस पे वेस्ट कर देते हैं। इस क्रिटिकल स्पिरिट की वजह से आज जो चर्च है वो बार बार स्प्लिट हो रहा है, बार बार उसमें ब्रेकअप्स आ रहे हैं। एंड एवरी टाइम व्हेन अ चर्च स्प्लिट्स इट बिकम्स वीक। जब भी चर्च टूटता है, चर्च क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और बेशुमार हमें जो इंडिजिनस छोटे छोटे चर्चेस नजर आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके वजूद का एक रीजन ये नहीं कि खुदा ने उन्हें कहा चर्च बनाने के लिए, बल्कि समहाउ वो उन 20 पॉइंट्स पे या उन 30 पॉइंट्स पे, जो भी उनके आपस के मामला थे, उन पे एग्री नहीं कर सके और एक पॉइंट की खातिर उन्होंने स्प्लिट कर लिया या एक अपना चर्च जो है वो शुरू कर लिया। सो मैंने, ये इंसान की नेचर है कि हम छोटी चीजों पे इतना फोकस करते हैं कि हम बड़ी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हम माइनर चीजों पर इतना मेजर करते हैं कि हम मेजर चीजों को इग्नोर कर देते हैं। सो ये प्रॉब्लम जजमेंटल स्पिरिट चर्च के अंदर भी मौजूद है और चर्च के बाहर भी मौजूद है, और जो लोग हमारी तरह नहीं सोचते हैं या मे बी हमारी तरह का उनका तर्ज अमल नहीं है या हमारी तरह ड्रेसअप नहीं होते हैं, तो हम बहुत जल्द उनसे उनके ताल्लुक से ये टेंडेंसी रखते हैं कि हम उनको क्रिटिसाइज करें या हम उनके ताल्लुक से जजमेंटल जो व्यू है हम उसको डेवलप करें या पेश करें। और बिलीवर्स की एक टेरिबल प्रॉब्लम ये है, वी आर वेरी क्विक इन पर्सनल जजमेंट्स ऑफ अदर बिलीवर्स, जो मे बी हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं या हमारी तरह से नहीं सोचते हैं या हमारी तरह से नहीं रहते हैं या हमारी तरह से खाना नहीं खाते हैं। सो वी आर वेरी क्विक टू पास ऑन पर्सनल जजमेंट्स ऑन अदर बिलीवर्स। सो पौलुस रसूल इस चैप्टर में रोमियो 14 बाब में हमें 5 किस्म के ग्रुप्स दिखाते हैं जो इस चर्च में मौजूद हैं, और उनमें वो ये उनको ये बता रहे हैं कि जो मच्योर ईमानदार हैं उन्हें किस तौर से बिहेव करना चाहिए और एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए। सो ये जजमेंटल स्पिरिट कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है चर्च में, ये पॉल के जमाने में भी थी, आज से 2000 साल पहले भी थी और आज भी मौजूद है। और जो लोग हमारी तरह के नहीं हैं या थोड़े डिफरेंट हैं या नए हैं, हम ये टेंडेंसी रखते हैं कि हम उनके अगेंस्ट अपनी क्रिटिसिज्म या जो जजमेंट है वो हम डेवलप कर लेते हैं। सो जब हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं रोमियो के चर्च में, तो यू ऑल नो एंड अंडरस्टैंड कि पौलुस रसूल के जमाने में रोम जो था वो दुनिया का सेंटर था, रोम वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और उनकी सारी जो रोमन एम्पायर थी उसका कैपिटल था, और सीजर जहां पे बैठते थे उसका तख्त था, और इस सबब से रोम जो था वो डिफरेंट कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉइंट था। हर किस्म का कल्चर, हर किस्म का बंदा, हर किस्म की नस्ल का बंदा, हर किस्म के एथनिक ग्रुप्स जो थे वो रोम में मौजूद थे। कैदी भी रोम में मौजूद थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स भी थे, गुलाम भी थे, स्लेव्स भी थे, उनके एम्बेसडर्स भी थे सारी प्रोविंसेस के, रोमन एम्पायर के उनके जो एम्बेसडर्स थे वो भी रोम में मौजूद थे। सो एक बड़ा डाइवर्स मिक्स्ड कल्चर था, और सेम जो सिचुएशन थी वो चर्च की थी कि चर्च में मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद थे, कोई किसी बैकग्राउंड से आया है, कोई ग्रीक बैकग्राउंड से है, कोई ज्यूइश बैकग्राउंड से है, कोई किसी और कल्चर से आया है, और अब चर्च ने उनको ये सिखाना है कि उन्होंने कैसे मिलकर इबादत करनी है और कैसे मिलकर रहना है। सो बाइबल में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो डिबेटेबल हैं या डिस्प्यूटेबल हैं, जिन पे हमारी इख्तलाफ राय हो सकती है। बाइबल में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हमारी इख्तलाफ राय हो सकती है, मिसाल के तौर पर चर्च के लोग कैसे बैठेंगे, चेयर्स पे बैठेंगे या जमीन पे बैठेंगे, तो बाइबल ने हमें नहीं बताया, ये आपके कल्चर पे डिपेंड करता है। लेडीज अलग बैठेंगी, मर्द अलग बैठेंगे, सेग्रीगेटेड कॉन्ग्रीगेशंस होंगी या मिक्स्ड होंगी, चर्च ने इसके बारे में, बाइबल इसके बारे में खामोश है। प्रेयर आपने कैसे करनी है, खड़े होकर करनी है, बैठ के करनी है, घुटनों के बल करनी है, कैसे करनी है, इसमें डाइवर्सिटी मौजूद है। सो दे आर डिस्प्यूटेबल मैटर्स, और पॉल इसमें 5 चीजों को लेते हैं इस पैसेज में कि इन छोटी छोटी चीजों पे हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। द मेन पॉइंट इज यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, और ईमान की वजह से हम सब एक हैं, और यीशु मसीह पर हमारा ईमान है कि वो वाहिद दुनिया का निजात दहिंदा है। तो बजाय हम इन छोटी छोटी बातों पर जो डिबेटेबल हैं और डिस्प्यूटेबल हैं, कुछ बाइबल की ऐसी बातें हैं जिन पे हम जो एब्सोल्यूट है, थियोलॉजी की बातें हैं, एब्सोल्यूट बातें हैं जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते। यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी इनकार्नेशन, वर्जन बर्थ, ट्रिनिटी, रेजोरेक्शन, अटोनमेंट, उसका वापस आना, रैप्चर, सेकंड कमिंग, ये अनडिबेटेबल है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो डिबेटेबल भी हैं। आप रोटी खाना चाहते हैं, आप रोटी खा ले, चावल पसंद करते हैं चावल, इसकी वजह से कोई अलग कलीसिया बनाने की जरूरत नहीं है। सो द पॉइंट इज, चर्च के अंदर क्रिटिकल स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। चर्च के अंदर कौन सी स्पिरिट होनी चाहिए? ब्रदरली लव। गजल गुजलियात दो बाब उसकी चौथी आयत में सोलोमन लिखते हैं, योर बैनर ओवर मी इज लव। उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं कि तेरा जो झंडा मेरे ऊपर है वो कौन सा है? मोहब्बत का झंडा है। योर बैनर ओवर मी इज लव। सॉन्ग ऑफ सोलोमन में चैप्टर 2 उसके वर्स 4 में आप ये पढ़ते हैं। सो यही प्रॉब्लम रोम के चर्च में है। लोगों ने निजात पाई, डिफरेंट ग्रुप्स में से आए, रोम का चर्च बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और अगर आप उस चर्च में जाएं, बड़ा चर्च है, इबादत हो रही है, बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं, वाइज हैं, कलाम है, मिरेकल्स हैं, हीलिंग्स हैं, और बड़ी टेस्टिमनीज है, सब कुछ है। मे बी यू गो इन टू दैट चर्च उस जमाने में, तो आप कहेंगे आई हैव कम इन टू पैराडाइज। क्या जबरदस्त लोग हैं, गैर जुबाने बोल रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं, ये चीज हो रही है, वर्शिप हो रही है, टेस्टिमनीज। लेकिन अगर आप एक महीना उस चर्च में स्टे करेंगे, द ह्यूमन नेचर शोज अप, इंसानी फितरत जाहिर होना शुरू हो जाएगी और आपको नजर आएगा चर्च में तो बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातों पे डिसएग्रीमेंट करते हैं। सो चर्च की साइकी ये है कि हमने ईमान के गिर्द जमा होना है, हमने अपने जो डिबेटेबल इश्यूज हैं हमने उनको एक साइड पे रखना है, और जो कलाम के अनडिबेटेबल इश्यूज हैं, इथर्नल वैल्यूज हैं, जहां पे हमने साथ मिलकर एक दूसरे के चलना है, और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, आपके चर्च अमीर लोग भी हो सकते हैं, गरीब लोग भी हो सकते हैं, देसी भी हो सकते हैं, गैर मुल्की भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। चर्च को ये याद रखना है, वी ऑल नीड ईच अदर। आज चर्च के बुजुर्गों को जवानों की जरूरत है, और चर्च के जवानों को बुजुर्गों की जरूरत है, वी ऑल नीड ईच अदर। चर्च कोई ऐसी सेग्रीगेटेड चीज नहीं है, हम सब ने मिलकर खुदावंद की इबादत करनी है, गवाही देनी है, और अपने ईमान पर कायम रहना है। सो पांच चीजें जो पॉल यहां पे देखते हैं रोम के चर्च में कि किस किस्म के लोग हैं। नंबर वन, इस वक्त रोम के चर्च में देयर वर न्यू कॉन्वर्ट्स एंड देयर वर लॉन्ग टाइम बिलीवर्स ओवर देयर। एक ग्रुप हमें क्या नजर आता है, वो लोग हैं जो अभी अभी तब्दील हुए हैं, न्यू कॉन्वर्ट्स हैं, और कुछ वो लोग हैं चर्च में जो पुराने कॉन्वर्ट्स हैं। किस किस्म के लोग हैं चर्च में रोम के? आपके चर्च में भी ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 साल पुराने हैं चर्च में, कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 दिन पुराने हैं चर्च। यू ऑल हैव टू गो टूगेदर। चर्च में ऐसे लोग भी होंगे जो 20 साल पुराने हैं, और चर्च में ऐसे लोग भी होंगे जो 2 साल पुराने हैं। नंबर 2, इस रोम के चर्च में कैसे लोग थे? कन्वर्टेड ज्यूज एंड कन्वर्टेड जेंटाइल्स। ऐसे लोग थे जो यहूदियों में से आए, और ऐसे लोग भी थे जो गैर कौम, यूनानी भी हो सकते हैं, किसी और कल्चर के भी हो सकते हैं, वो उस ग्रुप में आए। यहूदी भी थे, गैर कौमों के लोग भी थे। आपके चर्च में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। मे बी आप बाय बर्थ पेंटिकॉस्टल लोग हैं, मे बी आप कैथोलिकिज्म से आए हैं, मे बी आप किसी और मजहब से आए हैं, मे बी आप किसी और कल्चर से आए हैं। तो चर्च में हर किस्म के जो एथनिक ग्रुप्स हैं और जो कल्चर्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप था चर्च में वो था वेजिटेरियंस एंड मीट ईटर्स। एक ग्रुप था वो कहता था हमने सिर्फ सब्जियां खानी है, और दूसरा ग्रुप कौन सा था? गोश्त खाने वाले। शुक्र है गोश्त खोर थे, आदम खोर नहीं थे। सो वेजिटेरियंस भी थे और मीट ईटर्स भी थे रोम के चर्च में। देखें, जो बंदा ये लिख रहा है वो अपने जमाने का जबरदस्त फरीसी है, एंड ही नोज कि ईद कैसे मनानी है, सब्बत कैसे मनाना है, पाक चीजें कौन सी हैं, कोशार मीट कौन सा है या फूड कौन सा है, नापाक चीजें कौन सी हैं, कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी है। लेकिन वो ये कह रहा है कि एक दूसरे के लिए चर्च में टॉलरेंस पैदा करें। सो वेजिटेरियंस हैं और दूसरे मीट ईटर्स हैं। नंबर फोर जो ग्रुप यहां पे नजर आता है हमें रोम के चर्च में, वो ये है, कुछ लोग हैं जो खास दिनों को मानते थे। फलानी ईद है हम ये सेलिब्रेट करेंगे, सब्बत है हम ये सेलिब्रेट करेंगे, पैसओवर है हम ये सेलिब्रेट करेंगे, क्रिसमस है हम सेलिब्रेट करेंगे, ईस्टर है हम सेलिब्रेट करेंगे, गुड फ्राइडे है हम ये भी सेलिब्रेट करेंगे, न्यू ईयर सर्विस है हम ये सेलिब्रेट करेंगे। और एक और साइड थी, ग्रुप था वहां पे लोगों का जो इन चीजों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। आज भी ऐसे चर्च हैं जो कहते हैं ईस्टर ना सेलिब्रेट करें, हमें पता नहीं क्राइस्ट के एग्जैक्ट क्रूसिफिक्शन का दिन कौन था, क्रिसमस सेलिब्रेट करने की हमें क्या जरूरत है, हमें पता ही नहीं क्राइस्ट कब पैदा हुआ। तो चर्च में दोनों किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। पांचवी किस्म के लोग जो रोम के चर्च में थे, उसमें कुछ ऐसे लोग थे ओवर वाइन ड्रिंकर्स, शराब नहीं मैं पी लेते थे, मैं पीते थे। लेकिन एक और बिल्कुल ग्रुप था जो एब्सटेनर्स थे, जो कहते नहीं बिल्कुल इस चीज को हमने हाथ नहीं लगाना। अब ये सारा जो मिक्स्ड ग्रुप है ये उस रोम के चर्च में मौजूद है, जिसको पौलुस रसूल ने नर्चर करना है, मैच्योर करना है और उसको क्राइस्ट में मजबूत करना है। सो जो इस चैप्टर में, 14th चैप्टर में जो हम चांद एक मेन बातें देखते हैं वो ये है कि रिगार्डलेस ऑफ आवर डिफरेंसेस, हमारी रेसेस क्या है, हमारी अपनी प्रायोरिटीज क्या है, हमारी बैकग्राउंड्स क्या है, पॉल इस बात को स्ट्रेस करते हैं मेक रूम फॉर टॉलरेंस। चर्च अपने अंदर हर एक को दाखिल करने की या एक्सेप्ट करने की एबिलिटी पैदा करे। सो जहां पे बाइबल में लीगलिज्म है वहां बाइबल में फ्रीडम भी मौजूद है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा ने या बाइबल ने इंसान की अपने डिस्क्रीटमेंट पे या उसके अपने फैसले पे छोड़ दी। हमारी यूनिफॉर्मिटी एक ही है और वो यीशु मसीह है जिस पर हम ईमान रखते हैं और जिसकी शख्सियत को हम फॉलो करते हैं और जिसकी तालीम को हम फॉलो करते हैं। बेशक आप दुआ में 50 दफा झुकें, 50 दफा खड़े हों, घुटनों के बाल हो जाएं, जितने मर्जी सजदे करें, सारे सजदे यीशु के लिए हैं, लेकिन पाबंदी कोई नहीं है, एक भी ना करें फिर भी कोई बात नहीं। असल चीज यह नहीं कि हमारा आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है और हमारी आउटवर्ड रिलीजियोसिटी क्या है, जो असल चीज है वो ये है कि हमारा इनर मैन क्या है, हमारे दिल में क्या है। हम कई कन्वेंशन पे जाते हैं, वहां लोग कहते हैं आपने स्टेज पे जाना आप जूती उतार दें, तो हम उनसे आर्गुमेंट नहीं, कोई बात नहीं, आपका ये कल्चर है, आपका ये प्रेस्बिटेरियन है, व्हाटएवर, कोई बात नहीं, हम फॉलो करेंगे, हम जूती उतार देंगे। सो ये कोई डाइवर्सिटी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट। लेकिन जो हार्ड कोर इश्यूज हैं थियोलॉजी के या बाइबल के, हम उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, जिनके ताल्लुक से ना बाइबल ने कमांड किया है ना हमें फॉरबिड किया है, उनमें हम अपने लिए स्पेस पैदा कर सकते। सो द पॉइंट इज चर्च मस्ट बी अ प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें क्राइस्ट। एक औरत गुनाह के फेल में पकड़ी गई, पहला पत्र वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया, ओके आई डोंट पुट जजमेंट ओवर यू, खुदा क्राइस्ट ने उसको जज नहीं किया, क्राइस्ट ने उसको लव में फ्रीडम ग्रांट किया। हालेलुया, पहला पत्र वो मारे जिसने गुनाह, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए चर्च में। इतनी जो न्यूट्रल इश्यूज हैं, न्यूट्रल इश्यूज की बात कर रहा हूं, जो न्यूट्रल नहीं है उनमें चर्च को सख्त होना चाहिए, डाइवोर्स नहीं है, फलां चीज नहीं है, जिन गुनाहों से बाज करना है या बाज रहना है वो अपनी जगह है। लेकिन चर्च में जो न्यूट्रल इश्यूज हैं, मॉरली भी किसी और तरह से भी, चर्च को स्ट्रिक्टनेस नहीं शो करनी चाहिए। कोई चर्च मेंबर है वो आधा घंटा लेट आ गया चर्च में, तो आपको उसके सर पे डंडे मारने की जरूरत नहीं है। पता नहीं बेचारे की क्या प्रॉब्लम थी, बिजली नहीं आ रही थी, पानी नहीं आ रहा था, मोटर जल गई, फलान चीज हो गई, घर से निकलने लगे तो मेहमान आ गए, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये एक माइनर बात है, कोई बात नहीं। न्यू टेस्टमेंट में ऐसा कोई वाक्य मौजूद नहीं है कि जी इतने बजे चर्च की मीटिंग है, आपको इतने बजे होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, यह नहीं कि नहीं होना चाहिए। बट नाउ एंड देन किसी वक्त भी वी शुड गिव स्पेस, कोई प्रॉब्लम हो जाती है बंदे को, ठीक है। न्यू टेस्टमेंट में काफी इबादत होती थी, सुबह के वक्त भी हो रही है, दोपहर के वक्त भी हो रही है, शाम के वक्त भी हो रही है, तो खुदा का बंदा रात को भी मैसेज दे रहा है, खिड़की में बंदा बैठा बैठा सो गया, वो नीचे गिर गया, वाक्य याद है ना आपको। तो दे वर हैविंग चर्च ऑल द टाइम। चलें, डिसिप्लिन होना, टाइम टेबल होना, इट्स गुड, आपने ड्यूटी पे जाना है, छुट्टी का मसला, ये चीज है। लेकिन इसमें कोई चर्च 9 बजे कर रहा है, गुड, कोई 11 बजे कर रहा है, ठीक, कोई 4 बजे शाम को कर रहा है, यू कैन डू इट, कोई रात को 9 बजे किसी को सूट करता है, आप उस वक्त में मीटिंग कर लें। ये ऐसे इश्यूज नहीं है कि जिनकी वजह चर्च स्प्लिट हो जाए और हम एक दूसरे के ताल्लुक से हार्ड लाइनर बन जाए, एक्सेप्टेंस को लाए। और थर्डली, सम बिलीवर्स का बिहेवियर ऐसा होता है कि अगर ये बंदा चर्च में लेट आया मे भी, या ये मेरी तरह नहीं सोचता है, मेरी तरह दुआ नहीं करता है, या मेरी तरह नहीं रहता है, या मेरी तरह वर्शिप नहीं करता है, मे भी ये मेरे से लो ग्रेड का बंदा है। कुछ बिलीवर्स अपने को क्या समझते हैं, वो हाई ग्रेड के हैं, जैसे हाई ग्रेड यूरेनियम होता है, और कुछ ईमानदार को समझते हैं ये लो ग्रेड सिलिकॉन की तरह। बट द पॉइंट इज, चर्च को यह हमेशा याद रखना है, एवरी बिलीवर इन द चर्च इज इक्वल। हालेलुया, आप सब यीशु मसीह में इक्वल हैं। अगर आप 20 साल पुराने बिलीवर्स हैं या आप 2 साल पुराने बिलीवर्स हैं, यू आर इक्वल। यीशु मसीह ने हमें एक बना दिया है। हाँ, एक्सपीरियंस का डिफरेंस हो सकता है, नॉलेज का डिफरेंस हो सकता है, और चीजों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जहां तक हमारा यीशु मसीह में होने का ताल्लुक है, एवरी बिलीवर इन द चर्च इज इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। खुदा की निगाह में यह बंदा भी वैसी है जैसे यह बंदा है, खुदा इसकी भी वैसी सुनेगा, खुदा आदमियों का तरफदार नहीं है। खुदा में जैसी यह बंदी है, खुदा में वैसी वो बंदी है, उसको खुदा में होना चाहिए। एक और पॉइंट जो हम इस पैसेज में देखते हैं वो ये है, हम सब अपने लिए खुदा के सामने जिम्मेदार हैं, हम दूसरों के लिए खुदा के सामने जिम्मेदार नहीं। पॉल इस चैप्टर में लिखते हैं, यीशु मसीह की जजमेंट सीट के आगे हम सब अपना अपना हिसाब देंगे। जब आप उस सीट के सामने जाएंगे क्राइस्ट की, खुदा आपसे ये नहीं पूछेगा, यार फलां बंदे का सुना, उसके बारे तेरे की ख्याल है। No, sir, he is not going to ask you. वो किसी खातून से ये नहीं पूछेगा, हाँ आप बताएं कि आप उस आपकी सास के बारे में आपकी क्या राय। जब खुदा ने आपसे किसी के बारे में पूछना ही नहीं है, तो आप जमीन पे क्यों उसके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्रिटिसाइज कर करके। आसमान पे सिर्फ खुदा ने आपसे आपके ताल्लुक से पूछना, आपने क्या किया, आपने कैसी जिंदगी बसर की, आपका करैक्टर कैसा था, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी थी, आपकी गिविंग कैसी थी, आपका फेथ कैसा था, आपकी लिविंग कैसी थी। वो किसके बारे में पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा। सब कहें मेरे बारे में पूछेगा। सो वो आपसे किसी और के बारे में नहीं पूछेगा, ही नोज अबाउट एवरीवन। सो अपनी जिंदगी ठीक करें, अपने ईमान को दुरुस्त रखें, और अपनी जिंदगी से खुदावंद को जलाल दें। सो इस चैप्टर में रोमन 14 में पौलुस रसूल बिलीवर्स को, जो अपने आप को ईमानदार समझते हैं और जो मच्योर समझते हैं और जो फन्ने का समझते हैं अपने आप को, उनको ये बता रहे हैं, सेल्फ लिमिटेशन में रहना सीखो, एक्सरसाइज योर सेल्फ लिमिटेशंस, अपने बाउंड्रीज में रहना सीखो। तो अब हम तीन आखिर में तीन मेन बातें सीखेंगे जो इस चैप्टर में हमें नजर आती हैं, और नेक्स्ट टाइम हम पांच प्रिंसिपल सीखेंगे एक टॉलरेंस के, और कैसे हमने जजमेंटल स्पिरिट पे गालब आना है इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज सिर्फ हम आखिर में तीन बातें देखेंगे, तीन बेसिक बातें। स्वयं पढ़ेंगे पहली चार वर्सेस, रोमन्स चैप्टर 14 फर्स्ट फोर वर्सेस।
थैंक यू मास्टर। रोमियो 14वां बाब उसकी पहली चार आयात, ये सफा नंबर 151 पर है। कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक्को शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक कोई तकाद है कि हर एक चीज का खाना रवा है, और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतालिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है।
आमीन। कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक और शुबे की तकरारों के लिए नहीं। फर्स्ट मैसेज जो पॉल यहां पे हमें दे रहे हैं इस चैप्टर 14 में, वो ये है, एक्सेप्ट वन अनदर इन क्राइस्ट। जैसे मसीह ने आपको कबूल कर लिया है, वैसे ही आप दूसरों को अपनी जिंदगी में, अपने चर्च में कबूल कर लें। एक्सेप्ट ईच अदर इन क्राइस्ट। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, पॉल ये कह रहे हैं, ओपन योर हार्ट एंड ओपन योर होम्स टू अदर पीपल। अपना दिल और अपने घर को दूसरों के लिए खोल दें। जो डिबेटेबल डिफरेंसेस हैं वो हमारे रिलेशनशिप को चर्च में हिंडर न करें। और सेकंड जो एक वर्ड जो वहां पे यूज करते हैं वो ये है कि तू अपने भाई पर इल्जाम न लगा। इल्जाम, जजमेंट इंग्लिश की बाइबल में आया, क्रिटिसाइज। सो पॉल इज सेइंग कि एक बंदा ये खाता है, दूसरा कहता नहीं मैंने नहीं खाना, मैं ये पसंद करता हूं, मैं ये नहीं करता, मैं ईदों को सेलिब्रेट करता हूं, मैं नहीं करता। चलें, ये डिबेटेबल इश्यूज हैं, इनको एक तरफ आप रहने दें, लेकिन इस वजह से उस पर आप इल्जाम ना लगाएं, उसकी आप जजमेंट नहीं। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? किसका नौकर है वो? वो क्राइस्ट का नौकर। जो डिबेटेबल इश्यूज हैं, क्या आपके बाल कैसे होने चाहिए, बाल कैसे बनाते हैं, फलां चीज कैसे करते हैं, ड्रेसअप कैसे होते हैं, खाने के आपके टाइमिंग क्या है, फलां चीजें हैं। इस वजह से किसी को आप रिजेक्ट ना करें, बल्कि आपका दिल और आपका घर जो है वो चर्च के लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, बिलीवर्स के लिए, सेंट्स के लिए खुला होना चाहिए। इसका मतलब यह है, पहली वर्ड हमें ये एक इंडिकेशन दे रही है, वो ये है, मेक फ्रेंड्स इन द चर्च। चर्च में हर एक के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती, सुलह, और आपके फैमिली फ्रेंड्स होने चाहिए। चर्च का मतलब नहीं आप यहां से आए, आप डिफरेंट जगहों से आए हैं, कोई कहीं किसी जगह से आया, एक घंटा दो घंटे हम यहां पे बैठे, कलाम सुना, वर्शिप की, हदिया दिया, पाक शराकत ली, और आप घरों को चले गए, और आपको यही नहीं पता कि मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो बंदा कौन था। Be friendly in the church. Meet each other in the church. Try to know each other. Try to love each other. Try to help each other. Church के बाद आप एक दूसरे को मिलें और एक दूसरे से पूछें, जिसके ताल्लुक से पाक रूह आपको इंडिकेट करता है, क्या मैं आपके लिए किसी एरिया में दुआ कर सकता हूं? Can I help you in any way? क्या आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? तो if you can allow me, तो मैं सारा हफ्ता आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू। किसी कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस एरिया में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? चर्च शुड नॉट बी अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स हु आर जस्ट प्रेइंग एंड वर्शिपिंग गॉड। चर्च शुड बी अ प्लेस ऑफ फ्रेंड्स who are having fellowship together, understanding each other, helping each other, praying for each other, supporting each other, backing up each other. جو کمزور ہیں, کمزور ایمان والے ہیں, کسی پرابلم میں سے گزر رہے ہیں, کسی ویلی میں سے گزر رہے ہیں, کسی آزمائش میں سے گزر رہے ہیں, کوئی بیماری میں سے گزر رہے ہیں, کسی ٹیربل ٹائم میں سے گزر رہے ہیں, جن کے لیے آپ تسلی, ایمان, امید کا سرچشمہ بن سکتے ہیں. ہللویا, ایک دوسرے کو مسیح میں قبول کرو. اگر خدا نے اس بندے پہ یا اس بندی پہ یا اس فیملی پہ رحم کیا ہے اور نجات بخشی ہے اور اپنے فضل کو انڈیلا ہے, تو ہمیں انہیں قبول کرنے میں دشواری یا دقت جو ہے وہ پیش نہیں آنی چاہیے. سو ایک قسم کے گروپ کو, میں بھی جو بہت روحانی ہے یا بہت پرانا ہے یا بڑا ایکسپرٹ ہے, ریلیجیس ایکسپرٹ ہے, دوسرے گروپ کو جو چرچ میں بھی نیا ہے, کمزور ہے یا سٹرگل کر رہا ہے, کسی فیز میں سے گزر رہا ہے, اس کو لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. Once again, remember this thing, you are all equal in the church. گرچہ ہمیں جو سینئرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو پیسٹرز ہیں, ان کو اپنا پروٹوکول دینا چاہیے, ان کی عزت, ان کی جگہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جیسے خدا ان سے پیار کرتا ہے, سملرلی خدا آپ سے پیار کرتا ہے. His banner over me is love. نکالنے ذرا یہ ورس بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں ابھی. اس کا جھنڈا جو میرے اوپر ہے وہ کون سا ہے؟ محبت کا جھنڈا. سو وی شوڈ ناٹ بی کنڈیمنگ ادرز اینڈ وی شوڈ ناٹ بی ریجیکٹنگ ادرز, ویئر ایز وی شوڈ بی ایکسپٹنگ ادرز ان کرائسٹ. ہاں جی,
پریز دی لارڈ. غزل غزلات دوسرا باب اس کی چوتھی آیت, یہ پرانے عہد نامہ میں صفحہ نمبر 656 پر ہے. وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا.
اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا. سو ہیو یور اون کنوکشنز فار تھنگس وچ آر ڈیبیٹیبل, لیکن چرچ کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے ہماری کنوکشن ہونی چاہیے, ایکسپٹیبلٹی, ٹالرنس, لو, فرینڈشپ, بردرہڈ, companionhood, helping each other, good Samaritan, اور جس بھی ایریا میں جیسے بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں, اپنا ایفرٹ ان پٹ کر سکتے ہیں. اوور دا ایئرز جو چار پانچ باتیں میں نے اپنی زندگی میں ڈیولپ کی, یہ سال میری زندگی کا 25th سال ہے فل ٹائم منسٹری کرتے ہوئے, اور 31st سال ہے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے, اس کی مہربانی اور اس کے فضل سے. سو ان 31 ایئرز میں جو چیزیں میں نے اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, جو آج میں اپنے اندر دیکھ سکتا ہوں, پہلے نہیں تھے. نمبر ون, آئی ایم ویری سلو ان پاسنگ ججمنٹ. کسی کے تعلق سے, کوئی بھی ججمنٹ دینے سے, آپ مجھے کسی کے بارے میں پوچھ لیں, کبھی بھی پوچھ کے دیکھ لیں, آئی ول ناٹ پاس مائی ججمنٹ انلیس آئی نو سم تھنگ ویری شیورلی واٹ ہیز ہیپن اینڈ وائی اٹ ہیز ہیپن. نمبر دو, جو میری سائیکی ہے, جو میری سمجھ ہے, وہ یہ ہے, آئی ویلیو پرسن مور دین تھنگس. انسان کی قیمت زیادہ ہے, چیزوں کی قیمت کم ہے. انسانوں سے پیار کریں, چیزوں کو استعمال کریں, جبکہ آج چرچ کی سائیکی کیا بن گئی ہے, انسانوں کو استعمال کرتے ہیں, چیزوں کو پیار کرتے ہیں. نمبر تھری, آئی آلویز سی دا پازیٹو سائڈ فرسٹ. کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی ایونٹ ہو جاتا ہے, کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے, سب سے پہلے کیا دیکھیں, لک ایٹ دا پازیٹو سائڈ آف اٹ. خدا نے یہ ہونے دیا. دیکھیں, دو چیزیں یاد رکھیں خدا کے تعلق, جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے, یا تو وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے یا خدا اس کو ہونے دیتا ہے. خدا کی طرف سے نہیں ہوتا لیکن خدا اس کو ہونے دیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں کون ہے بیچ میں, کہ کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ گاڈ. سو آلویز سی دا پازیٹو سائڈ آف دا تھنگ. خدا نے یہ چیز ہونے دی, مے بی وہ نیگیٹو ہے, سی دا پازیٹیوٹی آف گاڈ ان دا نیگیٹیوٹی آف یور لائف. خدا وہاں بھی موجود ہے. اگر میں سمندر کے نیچے چلا جاؤں, خدا وہاں بھی موجود ہے. अगर मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊं, खुदा वहां भी मौजूद है। गरचे मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे आसरा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, क्योंकि तू मेरे साथ है। सो इन द नेगेटिविटी ऑफ योर सर्कमस्टांसेस सी द पॉजिटिविटी ऑफ गॉड। नंबर फोर, ये मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, मे बी इट्स गुड इफ यू कैन फॉलो इट, अगर आपको आपको दिल की अच्छी लगती है। व्हेन आई सी अ पर्सन, व्हेन आई मिनिस्टर अ पर्सन, व्हेन आई काउंसिल अ पर्सन, चर्च में अदरवाइज, आई डोंट सी वेयर द पर्सन इज नाउ, मैं जहां पर आज बंदा उसको नहीं हम देखते हैं, बल्कि हम उसकी जिंदगी में 5-10 साल आगे देखते हैं कि ये बंदा क्या हो सकता है। सी इन टू द फ्यूचर ऑफ दैट पर्सन। नंबर फाइव और आखिरी बात, और फिर हम आगे बढ़ेंगे मैसेज में, एंड दैट इज ओवर द ईयर्स मैंने इस बात को प्रैक्टिस की और डेवलप किया है कि मैं अपनी लैंग्वेज में नेगेटिव टर्म्स जो है वो नहीं यूज करता। अगर कोई नेगेटिव बात कहनी भी हो तो मैं पॉजिटिव वे में कहता हूं। सो बाइबल की बड़ी जबरदस्त आयत है, खुदा मेरे साथ है मुझे किसकी दहशत, खुदा मेरे साथ है मुझे किसकी हैबत। क्यों हम दूसरों के बारे में नेगेटिव, जजमेंटल, क्रिटिकल होते चले जाएं? हम अपने मैटर्स को माइंड करें और मेंड करें, अपनी जिंदगियां खुदा के साथ दुरुस्त करें, बाकी जो कुछ हो रहा है हम उसके लिए दुआ करते हैं। आमीन। दूसरी बात जो हम इस पैसेज में लर्न करते हैं, 5वीं से 9वीं आयत तक, एंड दैट इज हैव योर ओन कन्विक्शंस। इस दिन रोजा रखना है, बुध को रखना है, जुम्मे को रखना है, हैव योर ओन कन्विक्शंस। सेलिब्रेट करना है, ईदों को नहीं करना, हैव योर ओन कन्विक्शंस। स्टडी करें, बाइबल को स्टडी करें, एविडेंस को देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, आर्कियोलॉजी को देखें, हिस्ट्री को देखें, वॉट एवर यू कैन वर्क ऑन, विकीपीडिया देख लें, कोई इश्यू आप स्टडी कर रहे हैं, बट डिवेलप योर ओन बिब्लिकल कन्विक्शंस। व्हाई? बिकॉज जीसस इज आवर लॉर्ड, यीशु मसीह हमारा खुदावंद है। 5 से 9 है,
कोई तो एक दिन को दूसरे से अफसल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इतकाद रखे, जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता का शुक्र करता।
वो कह रहे हैं अगर ये ईदों को सेलिब्रेट कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? खुदावंद के लिए कर रहा है। एक बंदा नहीं करना चाह रहा तो उसका रीजन क्या है? वो खुदावंद के लिए नहीं करना चाह रहा। अगर वो ये गोश्त खा लेता है तो वो किसकी खातर खा रहा है? खुदावंद की खातर। अगर वो कहता नहीं मैंने ये नहीं खाना है, अब मैं वेजिटेरियन हूं, तो वो किसकी खातर कर रहा है? खुदावंद की खातर कर रहा है। तो पीछे जो कॉमन डिनोमिनेटर है, जो फैक्टर है, रूलिंग फैक्टर है, वो क्या है कि वो अपनी पूरी कन्विक्शन से किसके लिए कर रहे हैं? खुदावंद के लिए कर रहे हैं। तो पॉइंट इज इस 5 से लेकर 9वीं आयत तक जो फोकस है वो ये है कि अगर आपकी जिंदगियां पूरे तौर से फुली सरेंडर्ड हैं खुदावंद के लिए, तो आपका लाइफस्टाइल हमेशा बाइबल के मुताबिक, और आपको सरेंडर होने में, बाइबल की बात मानने में, दूसरों की बात मानने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ जीसस इज योर लॉर्ड एंड इफ हिज लॉर्डशिप इज अपॉन योर लाइफ, आपके जो लाइफ स्टाइल है वो जीसस की तरह, एज सिंपल एज दैट। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इन बातों में से निकलकर जो छोटी छोटी बातें हैं, आप एक दूसरे को इनकरेज करना, लव करना, एक्सेप्ट करना और एक दूसरे की हेल्प करना आप शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आगे।
क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और
अगेन पॉल डिफाइंस, अगर हम जिंदा हैं हम खुदावंद के लिए, अगर हम मार्टर हो जाते हैं हम खुदावंद के लिए, अगर हम कुर्बानी दे रहे हैं हम खुदावंद के लिए दे रहे हैं, अगर हम हदिया जात दे रहे हैं, अगर हम दहिये की दे रहे हैं चर्च में, अगर आप चर्च में बिल्डिंग फंड के लिए दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं? खुदावंद के लिए दे रहे हैं। चर्च में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, प्रेयर, preaching, offerings, sacrifice, fasting, helping others, जो कुछ भी आप कर रहे हैं चर्च में, उसमें, उन हर चीजों में, आपके हर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में, आपके हर स्पिरिचुअल एक्ट में, आपके हर स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन में, एक मेन चीज जो मौजूद होनी चाहिए वो ये है, उसमें लव का फ्लेवर होना चाहिए। अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ठंड ना दे पीतर और जान जनाती छान। ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। आपकी सारी चर्च एक्टिविटी में, आपकी सारी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी सारी पर्सनल डिवोशंस में फ्लेवर जिस चीज का होना चाहिए वो क्या है? लव। लव फॉर क्राइस्ट, लव फॉर ईच अदर, लव फॉर द वर्ल्ड टू बी सेव्ड एंड लव टू सर्व क्राइस्ट। फ्लेवर किस चीज का होना चाहिए? मोहब्बत। वरना जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये ड्रामे से ज्यादा नहीं कंसिडर होगा। ये उम्मत होंठों से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। हां जी आगे चलें।
बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो।
आमीन। इस पैसेज में जो हम दो तीन हवाले आप पढ़ना चाहेंगे जिनको आप नोट कर लें, जो सारा एक कंक्लूडिंग एलिमेंट होगा, 13वीं आयत, रोमियो 14:13। हाँ जी।
बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं।
सो पॉल एस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने कंक्लूजन चैप्टर 14 में, हमें क्या करना चाहिए? नंबर वन, बस हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं डिबेटेबल इश्यूज पे, जिन पे गुंजाइश मौजूद है डिफरेंसेस की, हम एक दूसरे पे इल्जाम ना लगाएं। 15वीं आयत,
लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है।
अगर
तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो तू फिर तो तू मोहब्बत के कायदा पर नहीं चलता।
फिर तू मोहब्बत के कायदा पर नहीं चलता। वॉक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लव। सेकेंड चीज पॉल क्या कह रहे हैं? लव के प्रिंसिपल को अपनी क्रिश्चियन लाइफ में फॉलो कर। और जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया, अगर आपकी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लव का फ्लेवर नहीं है तो फिर जो भी फ्लेवर है वो खुदा को पसंद नहीं आएगा। नंबर 3, 19वीं आयत,
बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो।
अगेन पॉल इज इनकरेजिंग देम इन वर्स 19, बस हम उन बातों के तालिब रहें, फॉलो करें उन चीजों को, उन चीजों के लिए स्ट्राइव करें। इस 19th वर्स में पॉल हमें बताते हैं जिनसे मेल मिलाप पैदा, सुलह पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है और बाहमी तरक्की हो। वो बातें जिससे कॉरपोरेट पूरा चर्च बाहमी मिलकर चर्च जो है वो ग्रो करे। डिफरेंसेस की वजह से चर्च ग्रो नहीं करेगा बल्कि वो ब्रेक होगा, वीक होगा। लेकिन यूनिटी की वजह से, मेल मिलाप की वजह से, एक्सेप्टेंस की वजह से एक दूसरे के लिए चर्च में क्या है? सबकी बाहमी तरक्की हो। मोहब्बत के ताल्लुक से लेट मी टेल यू टू थिंग्स। जहां तक मसीहत की तालीम है, बाइबल की वैल्यूज हैं, लव इज फाउंडेशनल फॉर क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जिंदगी और मसीही किरदार में जो बुनियादी चीज है वो क्या है? बुनियाद क्या है? मोहब्बत। अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। सेकेंडली, लव, अगापे लव, डिवाइन लव, ब्रदरली लव, फैमिली लव, चर्च लव, पास्टोरल लव, पास्टोरल केयर, एनी काइंड ऑफ लव। मोहब्बत वो वाहिद इन्वायरमेंट है जहां पे ग्रोथ होती है। अगर बच्चे को फैमिली में पेरेंटल लव मिलेगा बच्चा ग्रो करेगा। جسم میں تو وہ بڑھتا جائے گا کیونکہ وہ خوراک کھا رہا ہے, لیکن مینٹلی, فزیکلی, پرسنالٹی میں, کریکٹر میں, اسپرچولی, ادروائز بچہ کیسے گرو کرے گا؟ جب اس کو فیملی میں لو کی انوائرمنٹ ملتی ہے, اس کی پرسنالٹی میں ہولنس ہوگی, کمپلیٹ نظر آئے گا آپ کو اس کا کریکٹر. بیکاز ہیومن کائنڈ یا ہیومن بینگز اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ جب ان کو لو کا انوائرمنٹ ملتا ہے وہ گرو کرتے ہیں. وہ چرچ, اینی چرچ جو اس مسیحی محبت میں زندگی بسر کرے گا, وہ آٹومیٹکلی گرو کرتا چلا جائے گا. آپ کو بڑے بڑے جال نہیں بچانے پڑیں گے, آپ کو بڑی بڑی میٹنگز نہیں کرنی پڑیں گی, آپ لوگوں کو زبردستی دوسرے چرچز کے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے اپنے چرچ میں نہیں لائیں گے کہ آپ کا چرچ بڑا ہو جائے اور ان کا چرچ چھوٹا ہو جائے. اف لو از ان یور چرچ, چرچ آٹومیٹکلی گرو کرنا شروع کر, نمبرز میں اور ویلیوز میں, کریکٹر میں اور ڈسپلن میں. سو لیٹ می ٹیل دا پاسٹرز جو اس میسج کو سنیں گے, پاسٹرز لو یور پیپل. کلیسیا کے پاسبانوں, کلیسیا کے لیڈرز, کلیسیا کے لوگوں, کلیسیا کے رہنماؤ, اپنے لوگوں سے پیار کرو. ڈونٹ کک دیم, ڈونٹ کنڈیم دیم, ڈونٹ کریٹیسائز دیم. انہیں ہمیلیٹ نہ کریں, انہیں پریشان نہ کریں, انہیں ڈیمین نہ کریں, انہیں ڈی ویلیو نہ کریں. ان کے اندر ایک انسٹنٹک ویلیو موجود ہے کرائسٹ کی. If you love your people, they will grow spiritually. جس بندے نے 5 سالوں میں اسپرچلی گرو کر کے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے, آپ کے لونگ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ 5 مہینوں میں وہاں پہ پہنچ جائے گا. Hallelujah. So pastors, let me exhort you, love your people, care people and have compassion on your people. آخری بات, تیسری اور آخری بات جو ہم اس پیسج میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے, ابھی ہم نے دیکھا, نمبر ون, ایکسپٹ ون ادر, ایک دوسرے کو قبول کریں. نمبر دو, ہیو یور اون کنوکشنز, اور اپنی کنوکشنز دوسرے پر مسلط نہ کریں. گیو دم اسپیس, گیو دم ٹائم, گیو دم فریڈم. اگر وہ آپ کی زندگی میں ان باتوں کی بہتری کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اڈاپٹ کریں گے. نمبر تھری, ڈونٹ جج ادر. ہاں جی, دسویں آیت,
مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے, یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے.
یارویں اور بارویں آیت,
چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے, مجھے اپنی حیات کی قسم, ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی.
بارویں آیت,
بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا.
بس ہر ایک ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا. سو پچھلا جو پوائنٹ ہم نے دیکھا, ہیو یور اون کنوکشنز ورسز 5-9, اس میں اگر آپ ایک مین چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے, پال یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا لائف سٹائل خداوند کے مطابق ہے, کلام کے مطابق ہے, خداوند کی زندگی کے مطابق ہے, تو وہ دوسروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. 5, 6, 7, 9 آیت میں, ان 4 verses میں پولوس رسول نے یہ لفظ خداوند کے لیے, ابھی آپ نے پڑھا یہ لفظ, خداوند کے لیے, جو کھاتا ہے وہ خداوند کے لیے, جو نہیں کھاتا وہ خداوند کے لیے, جو عیدوں کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے, جو عیدوں کو نہیں مانتا وہ خداوند کے لیے, یہ ٹرم, یہ لفظ فار دا لارڈ, ان ٹو دا لارڈ, پولوس رسول نے 4 آیتوں میں 7 مرتبہ یوز کیا. اتنا سٹریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں سے خداوند کے لیے کریں اور خداوند کو خوش کریں. اور آخری بات جو ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی جو ہم نے پیسج پڑھا وہ یہ ہے, دوسروں پہ الزام نہ لگاؤ. 10 آیت میں ہم نے پڑھا, مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا. Why you criticize your brother or your sister? Why you judge them? Why you give your personal opinion regarding them? Tu apne bhai par kis liye ilzam lagata hai? Kyon? Paul keh raha hai, kya tu apne bhai ko hakir janta hai? Tu samajhta hai, I am superior and he is inferior? So Paul is telling the church at Rome, let me tell you church, no one is superior and no one is inferior. Let me tell the church, you are all equal in Christ. बहुत से ऐसे अव्वल हैं जो आखिर हो जाएंगे और बहुत से आखिर ऐसे हैं जो अव्वल हो जाएंगे अपनी और अपनी तालीम की खबरगिरी का. Mind your own matters, mind your own life. दूसरों के मामले में हमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं. एक एग्जांपल मैं देता हूं जॉन हाइड की. जॉन हाइड अमेरिकन मिशनरी था जिसने बरसों सियालकोट में गुजारे और सियालकोट के रिवाइवल का सबब बना. उनकी एक लेटेस्ट किताब आई है. लेटेस्ट से मतलब ये है कि वो तो खुदावन के पास चले गए. उनके दोस्तों में से किसी दोस्त ने किताब लिखी जॉन हाइड के बारे में और उनका ये एक उन्होंने कोट किया उनका एक बयान कि जब मैं सियालकोट में वहां स्कूल में यू नो ही वाज द टीचर ओवर देयर. वो लैंग्वेज टीचर थे वहां पे अंग्रेजी के और मैथ्स के. और जॉन हाइड ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपनी जिंदगी से मसीह का किरदार जाहिर करूं. तो मेरे दो तीन सर्वेंट्स थे. एक उनमें से कुछ हिंदू थे या कुछ अदर रिलीजन्स के थे. वो क्या करते कि मेरी कबर्स में से मेरे ट्रंक में से मेरे कपड़े चोरी कर लेते. स्वेटरें निकाल ली, कमीजें निकाल ली, जूतियां निकाल ली, मेरे मोजे चोरी कर लिए, मेरा कोट चोरी कर लिया और मेरे सामने पहन के वो फिरते रहते थे. मेरे ही कपड़े चोरी करके, मेरी स्वेटरें और मेरी जैकेटें चोरी करके वो मेरे सामने फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने कहा मैंने इनमें से किसी को भी कभी किसी एक को भी चेक नहीं किया. मैंने उसे ये नहीं कहा यार तो मेरी लग दी स्वेटर तेनू कितों मिली, जुड़वा तो नहीं सी किधर. वो अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने कभी किसी को मेरी चीजें चुराते रहे, मैंने उनको चेक नहीं किया. मैं उनके लिए दुआ करता रहा और मैंने इसलिए उनको चेक नहीं किया कि मेरे चेक करने की वजह से एक छोटी चीज की वजह से मे बी ये अफेंड ना हो जाए और मसीह को रिजेक्ट ना करें. लेट मी शो देम क्रिश्चियन लव. और इसी तरह गांधी ने अपने एक कोर्ट में कहा कि मैं मसीह को कबूल कर लेता लेकिन जो मैंने मसीहों का तर्ज जिंदगी देखा है अगर वो मसीह की तरह होता तो मैं भी मसीह को कबूल कर लेता. इट्स सो इंपॉर्टेंट. बहुत से लोग चार अंजीलें नहीं पढ़ेंगे जो न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है. बहुत से लोग वो पांचवी अंजील पढ़ेंगे जो आप हैं, जो आपकी जिंदगी पे लिखी हुई है, जो आपके दिल में लिखी हुई है, जो आपके किरदार से जाहिर होती है, जो आपकी गुफ्तगू से बाहर निकलती है. मैनी 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 पीपल इन द वर्ल्ड आर गोइंग टू रीड दिस फिफ्थ गॉस्पल जो आप. खुदा मेरी जिंदगी से मसीह का किरदार नजर आए, मसीह की खूबसूरती नजर आए, मसीह का जलाल नजर आए, मसीह की खुशबू नजर आए मेरी जिंदगी से, मेरे चेहरे से मसीह का चेहरा मुनक्कस हो, मेरी गुफ्तगू से मसीह की बातें नजर आए, मेरे दिल से मसीह की मोहब्बत नजर आए. ही इज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ चर्च. हालेलुया. आसमान पे खुदा आपसे आपके बारे में पूछेगा और वो आपकी जजमेंट करेगा. बस हम में से हर एक को और एक खुदा को अपना हिसाब देगा. खुदा आपसे आपकी बीवी का हिसाब नहीं पूछेगा, आपकी बहू या सास का हिसाब नहीं पूछेगा. किसके बारे में पूछेगा? आपके बारे में पूछेगा. आपने खुदा के सामने किसी और के ताल्लुक से जवाब नहीं देना है, आपने खुदा के सामने अपने ताल्लुक से जवाब देना. So, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना है, अपनी जिंदगी को मसीह बनाना है, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, अपनी 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 रूहानी जिंदगी पे हमने काम करना है. आपकी रूहानी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी है. ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं आपको रूहानी बनाऊं. मेरी जिम्मेदारी टीचिंग देना है. देखिए, आई कैन टेक यू इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड बट आई कैन नॉट टैंक यू विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड. मैं आपको खुदा की हजूरी में लेके जा सकता हूं, मैं खुदा की हजूरी को आप में दाखिल नहीं कर सकता. मैं पानी की बोतल आपको दे सकता हूं, पीना किसका काम है? आपका काम. आई कैन ड्रैग यू इन हिज प्रेजेंस बट यू मस्ट ड्रैग हिज प्रेजेंस इनसाइड यू. वो आपका अपना फेल है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपका अपना एफर्ट स्ट्रगल है. हालेलुया. खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे. खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, तसल्लत और उसका जोर हमेशा आप सबकी जिंदगियों पर कायम रहे. खुदावंद आपके साथ हो. हम दुआ करेंगे और पास्टर जुवेद आएंगे और इस प्रेयर में जो कन्फेशनल भी हो सकती है रिपेंटेंस की भी हो सकती है, चेंज के लिए भी हो सकती है, वो हमें इस प्रेयर में लीड करें।
खुदा बाप, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं और ये इकरार करते हैं बाप कि हम सब जजमेंट्स कर जाते हैं, हम सब क्रिटिसाइज कर जाते हैं, हम सब बाज़ुकात जल्द दूसरों के बारे में गलत राय दे देते हैं। आज सुबह हम बाप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हमें मुआफ कर, हमें क्लेंस कर, हमारी मदद कर कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सके, हम एक दूसरे को मजबूत कर सके, हम एक दूसरे को इनकरेज कर सके। हम सब इकरार करते हैं, हमारी मदद कर, हमें स्ट्रेंथन कर, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं मसीह के कुदूस नाम में, आमीन।
Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलमे अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाजन और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त खताबत के जरिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगाम का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे रब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता, ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318, लाहौर, पोस्ट कोड 54600, पाकिस्तान।